अब चलते हैं आगे आयत पे, मेरे साथ आप तर्जमा दोहराइए ताकि आपका भी हिस्सा बने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, लिमा क्यों, तकूलूना तुम कहते हो, मा जो ला नहीं, तफअलून तुम करते, लिमा तकूलून मा ला तफअलून तुम वो क्यों कहते हो जो तुम नहीं करते। चलिए बामुहावरा तर्जमा देखते हैं इसी का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम क्यों वो बात कहते हो जो तुम करते नहीं हो। बहुत ही खूबसूरत आयत है। खुलासा लेते हैं पहले, इसी पर रखिए और लिखिए चंद बातें, क्योंकि बाद में जब हम बहुत सारी चीज़ों में आ जाते हैं ना, तो फिर हमें उस आयत का मेन जो सेंट्रल पॉइंट या उसका एक अल्लाह का हुक्म होता है ना, वो बात नहीं समझ आ रही होती। तो पहले तो आप देखिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब है आयत में, और जब भी कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब होगा तो ये बात याद रखिए कि ये किससे खिताब है, ये क्या है। इसके लिए एक छोटी सी बात इसी दौर की सूरतों की नोट कीजिएगा। जैसा कि आपको हर दिन इस दौर के नाजिल होई वाली सूरतों में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, उसमें से आज का एक नुक्ता लिखें, और वो क्या है कि ये जो छठे ग्रुप की सूरतें जो हम पढ़ रहे हैं, यानी मदीना के आखिरी नसफ आखिर की जो सूरतें थीं, पीछे आपको बताया कि इसमें खिताब मुसलमानों से ही है, यहूद नसारा से नहीं। उनका जिक्र है इशारतन लेकिन कहा नहीं गया। इसमें एक और चीज़ है, और वो क्या कि मलामत का अंदाज है, झंझोड़ने का सा अंदाज है। ऐसे महसूस होता है जैसे उम्मत के बाद तबकात के जज्बात ईमानी और जोश जिहाद में कुछ कमी वाक़ हो गई, या उनका इन्फाक का जज्बा ज़रा सा सर्द हो गया तो उनको झंझोड़ा जाता है। सर जिंश का अंदाज है, कहीं मलामत है, कहीं जजर है, डांट है। इन सारी सूरतों में जिसमें से इस वक्त सूरत सफ की आयत हमारे सामने है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो या खुद को ईमान वाला कहते हो, क्यों तुम वो कहते हो जो तुम करते नहीं। और अगली भी आयत में आएगा कबूरा मक्तन इंदल्लाही अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, यानी अल्लाह के गजब को भड़काने वाली ये चीज़ है कि तुम कहो जो करते नहीं हो। इसी तरह बाकी सूरतों में भी आएगा। तो यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कमज़ोर ईमान वाले मुराद हैं, क्योंकि टेक्स्ट से ये बात पता चलती है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे पता चलेगा ये किसको कहा जा रहा है। तो लिखिए, इस आयत में ना तो अबू बकर से खिताब है, ना उमर से, ना उस्मान, ना अली, ना बड़े बड़े सहाबा। इस आयत में खिताब है कमज़ोर ईमान वालों से, और ये वो अंदाज़ है जिसको आप सामने रखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ समझ आ जाती है कि जिनके अंदर वक्त के साथ कुछ कमज़ोरी आ रही थी, कुछ ना कुछ मुश्किलात हो रही थी। थोड़ा सा यहाँ हम खुलासा करते हैं जो हमने बात कल शुरू की थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद आपको जब मैंने ये बात कह दी कि यहाँ कौन से ईमान वाले मुराद हैं, तो ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ईमान वाले कितनी किस्म के हैं। कल हमने मुजाहिदीन की बात की थी, ये दायरा एक गोल दायरा है, ये एक किस्म का एटम ऑफ सेल इस्लाम है। इस्लाम के गिरोह में सबसे अंदर ये जो डार्केस्ट जो अंदर का पार्ट है ना, ये है सबसे पहला दौर जिस पे हमने काफ़ी बात की थी। मुजाहिदीन, अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद करने वाले, बैकबोन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की रीढ़ की हड्डी, इनकी वजह से इस्लाम खड़ा रहता है। इस्लाम की इमारत बन रही हो तो ये इमारत को बनाने में मुआवनीन होते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लगाते, कहते हैं हम बनाएंगे ये काम, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। और जब इस्लाम की इमारत बन जाती है ना, तो फिर इसको चलाने में, इसको मेंटेन करने में हिस्सा डालते हैं। वो कहते हैं कि चीज़ बन जाए तो ऐसे बनती है तो बाद में नहीं चलती। आप देखिए ना कि हमारे यहाँ कितना मारूफ है कि मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाओ, बिल्डिंग खरीदो, ज़मीन लो, एक रात में फंड रेजिंग करके लोग 7-8 लाख डॉलर भी जमा कर लेते हैं, तो बाद में उस मस्जिदों को नहीं चलाना। उसके बिजली के बिल कहाँ से आने हैं, उधर के मेंटेनेंस कहाँ है, उधर के बाकी खर्चे कहाँ हैं, तो मुजाहिद वो होता है जो सिर्फ एक दफा दे के या एक दफा काम करके थक नहीं जाता, वो रोज पूछता है कि बताओ आज इस्लाम को क्या जरूरत है। ये हैं जिन पे इस्लाम का दारोमदार होता है। अगर अल्लाह ने वाकई इंसानों में किसी के ऊपर अपने दीन को रखा है तो वो ये होते हैं। इस्लाम की इमारत गिरी है तो ये उसको उठाने की कोशिशों में होते हैं, और अगर खड़ी है तो उसको खड़ा रखने की कोशिशों में होते हैं। इसके बाद का साइकिल जो आपको इस वक्त बिल्कुल डार्क येलो कलर में दिख रहा है, ये दूसरा ग्रुप है, मुखलसीन। द क्रीम ऑफ द इस्लाम, द क्रीम ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी आर मुजाहिदीन, तन मन धन लगाने वाले, जिद्दोजहद करने वाले, जान से, माल से, वर्क से, स्किल से, घरों से, बच्चों से, गाड़ियों से जिद्दोजहद करने वाले दीन को प्रमोट करने की। इसके बाद का जो सर्कल होता है ना, ये मुखलसीन का होता है। ये कौन होते हैं? ये मुखलिस होते हैं। मुखलस भी होते हैं और मुखलिस भी होते हैं, लेकिन कभी कभी इनसे गलती हो जाती है। इसमें मिसाल लिखिए खातिब बिन अबी बलता की। सूरत मुमताहिना में उनका पूरा तस्करा है और आप में से अक्सर कोई पता होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से एक दुआ की थी मक्का को फतह करने के लिए जब निकलना था उससे पहले, कि अल्लाह किसी को खबर ना हो कि मैं मक्का की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि शोर मचे और लोग हथियार लेकर निकलें और अल्लाह के घर की हुरमत पामाल हो। चुपके से जाकर बस आप वहाँ अल्लाह के नाम का झंडा लगाना चाहते थे। लेकिन करीबी लोग जो मीटिंग्स में होते हैं, जो वाकई मुजाहिदीन ही होते हैं, जो जिद्दोजहद में हिस्सेदार है, उनको तो बताना ही होता है। उनको बस पता था कि अल्लाह के नबी का इस दफा इरादा मक्का की तरफ है। उन्हीं के जरिए एक बात बाहर चली गई, खातिब बिन अबी बलता बदरी सहाबी थे, अल्लाह ने उनको बहुत ऑनर दी। उनके पास तक खबर पहुंच गई कि अल्लाह के नबी मक्का जा रहे हैं। अल्लाह ने वही के जरिए अपने नबी को बताया कि ये राज लीक हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन बाहर जा चुकी है। यहां भी लिखिए, कभी कभी बंदा नेकी करते करते गुनाहगार हो जाता है। वो क्या कहता है? कोई बात नहीं, अच्छा मैंने बस तुम्हें बता दिया, अब तुम किसी को ना बताना, बस मैंने तुमसे ये चीज़ शेयर की, अब तुम किसी से ना करना। आप देखिए कि हर काम के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें तो अंदर शेयर होती है ना। बावर्ची को किचन के कुछ राज पता ही होते हैं ना, जो बाहर खाए बैठे मेहमानों को नहीं होते। इसी तरह जहाँ भी दीन का काम होगा और मुनज्जम काम होगा तो कुछ प्लान्स होंगे, कुछ चीज़ें बाद में बताई जाएंगी, कुछ चीज़ें रोक ली जाती हैं, नहीं बतानी किसी को। क्यों? हर जगह कोई ये नहीं कि जंगी राज होते हैं और कोई बाहर खाना जंगी हो जाएगी, कभी सस्पेंस है। मैं आपको अपनी आदत बताती हूँ, हम लोग हिकमतुन बालिगा अपनी क्लासें करते हैं जिसमें सारे एडमिन साहब आपके जिम्मेदारान, जिसमें आप जिनको कोर टीम और सीनियर्स भी कहते हैं ना, वो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही हूँ, उनके समेत किसी को नहीं बताता कि मैं कल क्या पढ़ाने वाली हूँ, अगला क्या होगा। मैं किसी को अपनी स्लाइड्स नहीं दिखाती। वाई? मैं कहती हूँ वो भी तो स्टूडेंट होने का मजा लें। जब उनके सामने, सबके सामने एक चीज़ आएगी तो जो सबको खुशी होगी उस चीज़ को देख के, उनको क्यों ना हो। बिल्कुल आखिरी दम जिससे थोड़ी सी मुझे कोई मेंटेनेंस करानी पड़े, सिर्फ उनसे हेल्प लेती हूँ। क्या कोई राज है? कल पता लग ही जाना है ना, इसलिए कि वो भी इंजॉय करें, उनका हक होता है। क्योंकि जब हम सिर्फ एडमिन बनते हैं या हम सिर्फ अंसारुल्ला बनते हैं ना, तो हम वो स्वीटनेस ऑफ बीइंग स्टूडेंट भूल जाते हैं। समझ गया ना? तो कभी कभी अल्लाह के रास्ते के कामों में कुछ चीज़ें ढकी छुपी रहनी चाहिए, ये अमल की बात है। अल्लाह ने खबर दे दी कि आपका रास हो गया फाश। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनके साथ एक आध सहाबी को और लगा कर कहा जाओ रोज़ा खाख, रौदा जैसे लिखते हैं ना रियाजुल जन्ना, रौदा खाख, खा अलिफ खा एक जगह का नाम है, मदीना से मक्का के रास्ते में रौदा खाख के पास तुम्हें एक औरत मिलेगी, सारा उसका नाम है, उसके पास एक खत है, जंगी रास लीक हो गया, जो लेके आओ। कुछ कहा नहीं ज्यादा, साहबा निकले, एड़ लगा दी। हजरत अली ने घोड़े को जब तेज किया, यहां भी बड़ी अहम बात नोट करनीगा, अभी आप तेज चल रहे हैं तो जो दूसरे साहबी साथ हैं उन्होंने कहा अली जरा आहिस्ता चलो, क्या पता वो औरत हमें कहीं और मिल जाए इर्द गिर्द, यानी रोजे खाक तो हमें पता भी दूर है, क्या पता वो पहले मिले। तो वहां हजरत अली का सब बहलिल्लाह का जुमला सुन ले, कहने लगे अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ना कि वो औरत रोज़े खाक में मिलेगी तो मेरा ईमान है कि वो वहीं मिलेगी, तो मैं इधर उधर क्यों झांकूं। ये मांगी अल्लाह से, दैट इज़ द ट्रस्ट ऑफ सहाबा ऑन अल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही हुआ। जब रोज़े खाक तक ये पहुंचे तो वहां एक औरत थी। कहा, रुको, इधर किधर जा रही हो? असल में ये एक तवायफ थी, प्रोस्टिक्यूशन करती थी। जब गज़वे बदर की जंग हुई तो ये मक्का से हिजरत करके मदीना आई, और आके इसने खूब उस दौर में, जैसे वो कहते हैं ना, नौहा किया। और एक ट्रिक था, रोई धोई आपने सारे सरदार ही मरवा दिए, मेरा तो कारोबार ही ख़त्म हो गया, अब ना वो दादो ऐश है, ना महफ़िलें हैं, ना गाना ना बजाना, तो मैं तो मक्का में बैंक्रप्ट हो गई हूँ, तो मुझे मदीना में रहने की इजाज़त दी जाए। अल्लाह के नबी तो वैसे ही बहुत हलीम व तबा थे, और एक औरत जब पनाह मांगे और वो भी इधर आने की, आपने कहा आपकी मर्ज़ी, आपने उसको मदीना में रहने की इजाज़त दे दी, यानी बग़ैर पासपोर्ट वीज़े के उसको इजाज़त, नेशनैलिटी दी, आप रहिए। तब से वो औरत वहाँ थी। असल में वो स्पाई थी, असल में वो जंगी राज, इधर की बातें उधर की जाती थी, मुसलमानों को पता ही नहीं था। तो इस औरत को रोक लिया गया, कहा तेरे पास कुछ है लेके आ? कहा कुछ नहीं। कोशिश की ढूंढने की, वो नहीं मानी। इन्होंने कहा देखो, अगर तुम खुद से नहीं दोगी, हमें पता है तेरे पास एक खत है, अगर तुम नहीं दोगी ना तो हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। खैर, थ्रेट किया ना, तो उसने अपने बालों की मिडियों में गुंदा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा दिया। बस वो लिया और लेकर सहाबा वापस आ गए। अल्लाह के नबी ने खोला तो उसमें लिखा था, मिन खातिब बिन अबी बलता इला रूसाए कुरैश। वो खत क्या था? वो तो एक कह ले के जंगी राज था जिसकी मौत हो सकती है सजा। उस खत में खातिब बिन अबी बलता के लफ्ज लिखे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तो बेहतर है कि तुम अपना बचाव कर लो, और मेरे इस खत के बदले में तुम मुझ पर अगर कुछ एहसान करना चाहते हो तो मेरे बीवी बच्चे जो वहाँ मौजूद हैं उनको कुछ ना कहना। अब खत पढ़ा तो उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे जोश ईमानी वालों का क्या हाल हुआ होगा। आपके स्कूल का कोई छोटा सा राज, जो राज भी नहीं होता, क्या ज़रूरी अननेसेसरी बातें करने की, वो कोई बाहर कर दे तो आपको कितना बुरा लगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं उमर, सब्र करो, तुम्हें नहीं पता खातिब कौन है? बदरी साहबी हैं, और उनको अल्लाह ने आसमान से झांक के कहा कि जाओ, जो मर्जी नेकी करो, बुलाओ उसको। ये हिकमतें सीखी है, ये है असल में डिसिप्लिन, ये है इदारे चलाने का जब्त, ये है आपकी मस्जिदों को चलाने का जब्त। आज हर थोड़े अरसे बाद एक मस्जिद दो हिस्सों में क्यों बट जाती है? ये आज मैनेजमेंट और इमाम साहब के झगड़े क्यों होते हैं? और ये किसी एक फील्ड से दूसरे फील्ड का झगड़ा क्यों है? तरबियत नहीं है। कुरान पढ़े बगैर लोग मस्जिदें क्या बनाएं? खाना कबा में चले जाएं, फितने फैलाएंगे। खैर, आपने कहा खातिब को बुलाइए। ये है नबी का एक लीडरशिप रोल। देखें सब लिखा, ये देखें टेक्स्ट, देखें ये देखें मैसेज, देखें ये देखें स्नैपशॉट, देखें एक ही बात। भाई सब्र तो कीजिए, बुलाइए उनको। खातिब आ गए। कहा खातिब क्या बात है? अब खातिब को समझ आ गई थी। कहा अल्लाह के नबी, मैं आपको एक सच बात बताऊं ना, मैं मुर्तद हुआ कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, और ना मेरा आपसे कोई मिसट्रस्ट का मामला है, मेरा आज भी यही ईमान है कि आप लश्कर लेकर जा रहे हैं तो फतह आप ही की होगी, चाहे मैं आपका सारा राज भी खोल दूं। कितना बड़ा ट्रस्ट था उनका। मैंने सिर्फ ये खत इसलिए लिखा कि दूसरे लोगों के तो रिश्ते नाते हैं उधर, खानदान है, बिरादरी है, कबायली सिस्टम है, ये बहुत मैटर करता है, मेरा कोई नहीं है, और मेरे बच्चे, मेरी बीवी वहां फंसे हुए हैं। मुझे ये डर था कि जब आप हमला करेंगे तो सबसे पहले वो मक्का वाले किसको सताएंगे जो वहां बैठे हुए, किसी नॉन मुस्लिम में बैठे मुसलमानों भी सबसे ज्यादा थ्रेट होता है ना जब कहीं से कोई एग्रेशन होता है। तो मैंने ये एहसान जतलाने के तौर पे उनको कह दिए, यह समय मुझे मेरे बीवी बच्चों की मोहब्बत ने कहा, लेकिन मेरा और इस्लाम इसमें बिल्कुल नहीं है। कैसी लॉजिक की बात की, लेकिन मेरा फिर भी ईमान है कि मेरा खत भी चला जाएगा फिर भी जीतना आप नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, जा खातिब, तेरा उजर कबूल है। ये थे मुखलसीन। लिखिए, देखिए जब आप ये कैटेगरी समझेंगे ना तो इंशाल्लाह कई जगह गलत फैसलों से बचेंगे। ऐसे वक्तों पे लोग टूटते हैं, ऐसे वक्तों में लोग ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ते हैं, ऐसे वक्त में पाड़ पड़ते हैं, ऐसे वक्त में दो काम करने वाले आपस में झगड़ के नुकसान दीनी कॉज को दे के वो उधर उठ के चला जाता, वो इधर दीन का काम पड़ा रहता। वो कहता मैं नहीं करती, वो कहती मैं भी नहीं करती, तो फिर वही है ना कि आप बच्चे से तकिया लेने, आप दो बच्चे खड़े खेल रहे, आप कहते बेटा तकिया देना, वो दोनों भागते हैं शुरली की तरह और वहां दोनों लड़ने लग जाते हैं। वो कहता है मैंने लेना है, वो कहता है मैंने देना है, वो कहता है मैंने लेना है, माँ बैठी है तकिए के बगैर, वो दोनों लड़ पड़ रहे हैं। ये दीन में होता है? आपको क्या पता, अभी तो बच्चे हैं, आगे तो चलिए देखिए होता है क्या। आप एक दफा गाड़ी हाईवे पर डाल के तो देखिए, जो कल आपके साथ होना है आपको ना नहीं याद आ जाएगी। ये तो दूर के ढोल सुहाने, ये तो वक्त पड़ता है तो पता चलता है कि ड्राइविंग पूरी सीखे बगैर हमने बहुत बड़ी जगह पे हिस्सा डाल दिया। तो ये मुखलसीन होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं, ये मुजाहिद भी होते हैं किसी दर्जे के, लेकिन खता हो जाती है तो उस अपनी मुजाहिदाना कोशिशों में गलतियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम इनको भी एक्सेप्ट करता है। नबी ने कभी किसी को नहीं काटा, ये याद रखिए, काट दिया तो पत्ता कटा, क्यों काटे? अल्लाह ने तो कुफर वालों के पत्ते नहीं काटे, अल्लाह उनको दिन रात रिस्क देता, खिलाता पिलाता है। बहरहाल, इसके बाद आपको एक लाइट येलो किस्म का कलर दिख रहा है, ये है जी तीसरा कोर ऑफ पीपल, कमजोर ईमान वाले। ये या अय्युहल्लज़ीना मनलिमा तकूलू माला तफ़अलून में इनको पुकारा गया। ये कौन होते हैं? ईमान है, इखलास भी होता है, ये भी मुखलिस होते हैं, लेकिन ढीले ढाले, कच्चे पक्के, तरबियत की कमी होती है कभी कभी इनके ऊपर। अभी वो मुश्किलात की आंधी नहीं चली होती, हालात की छलनी से चने नहीं होते, या आप कह लीजिए कि इनके ईमान के दरख्त पर अभी मुश्किलात की धूप नहीं पड़ी होती। और अगर आपको वहां ले जाऊं जहां ये सूरत नाजिल हो रही है, तो गजवाए ओहद ही था ना, जिसमें 300 लोग अलग हो गए थे। तो जब वो 300 अलग हुए थे तो दो कबीलों के नाम याद है किसी को? वो भी ढीले हो गए थे, अंतफशला, लेकिन वल्लाहु वलीयुहुमा। और बाद में कहा करते थे, देखो है तुम्हारा तस्करा बुरे रंग में कि हम बुजदिल हो गए। जब अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेके चला गया ना, तो इनके भी कदम हिलने लग गए थे कि अच्छा फिर हम भी चलते हैं, लेकिन फिर दिल जमा दिया अल्लाह ने। तो अल्लाह कहते मैं इनका दोस्त था तभी तो जमाए, यानी अल्लाह जाने वालों को जाने देता, 300 को नहीं रोका, लेकिन इनको रोक लिया, क्योंकि जिसके दिल में ईमान का एक जर्रा, एक एटम बराबर इस्लाम ईमान, राई के दाने के बराबर ईमान है ना, दो लफ्ज लिख लीजिए आज आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह ऐसे बंदे को आग में नहीं डालेगा, या डालेगा अगर उसकी किसी मुश्किल से तो निकाल देगा। हदीस सबको समझ आ गई है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकबर होगा, अल्लाह उसको जन्नत में नहीं जाने देगा। और इसका ऑपोजिट, जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर ईमान होगा ना, अल्लाह बिल आखिर उसको निकलवा देगा, चाहे किसी की सिफारिश से या अल्लाह अपना हक इस्तेमाल करते हुए करे। जिस तरह कमजोर ईमान वालों को अल्लाह आग में नहीं डालेगा, या डालेगा तो निकाल देगा, इसी तरह दुनिया में ईमान वालों को दीन की जिद्दोजहद से नहीं निकालता। ये लोग गिरते पड़ते रुलते खुलते काम दीन के करते ही जाते हैं, होती कमजोरियां अंदर बहुत सारी, वीक पॉइंट होते हैं, जैसा हवाओं का रुख होता है ये वैसे हो जाते हैं। दीन में खुशहाली आए, खैर हो तो बड़े खुश, और जरा सी कमजोरी हुई तो बहुत ही कमजोर, और इस तरह से कच्चे लोग। नबी के दौर में ये कौन थे? अभी नए नए मुसलमान हुए, तरबियत नहीं हुई, ब्राह रास्त नबी के हाथ नहीं लगे, या बड़े ही अच्छे माहौल में है कि उनके ऊपर कोई आजमाइश नहीं आई। और मैं इसको आज के हालात में कहती हूँ, ये वो लोग हैं जिनको बना बनाया दीन मिल गया। देखिए दो मिसालें ले लीजिए, एक औरत तिनका तिनका जोड़ के घर बनाती है, जब शादी होके आई तो मियाँ की भी नई नई जॉब थी, बहुत थोड़े से रिसोर्सेज थे, बस महीने के गुजारे और बिल ही पूरे होते थे। आहिस्ता आहिस्ता हस्बैंड की पे बढ़ती गई, तजुर्बा बढ़ा, डॉक्टर बने हुए थे तो फिर उनकी प्रैक्टिस बढ़ती गई, फिर उस औरत ने तिनका तिनका जोड़कर एक बहुत प्यारा घर बना लिया, फिर बच्चे भी साथ ही साथ होते गए होते गए। अब आप देखिए, एक औरत जिसने तिनका तिनका जोड़ के घर बनाया था ना, फिर 20 साल के बाद उस घर में एक बहू बनकर एक औरत एक बच्ची आ जाती है, उसको उस घर की वो कदर कभी नहीं होगी जिसकी जो कदर उस सास जमा को थी। इसीलिए आप देखते हैं कि प्यार लाड से बने हुए, चौं से बने हुए घर फिर बाद में रुलते हैं, और एक वक्त आता है लोगों को अम्मा अब्बा के उस घर में नहीं रहना होता, वो कहते हैं हम अपना बनाएंगे, क्योंकि उस बहू को भी अब शौक है अपना घर बनाने का। तो जिस तरह आप जिस चीज पे मेहनत करते हैं, तिनका तिनका जोड़ते हैं, आपको उसकी बड़ी कदर होती है, बाद में आने वालों को वो कदर नहीं होती। और इसमें मैं आप लोगों पे नहीं लेती, लेकिन ले भी लेती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसकी मिसाल देती हूँ जो भी लोग इस वक्त अटलांटा में मौजूद हैं, और बाकी जगहों वाले खुद ही सोच लें अपने ऊपर लेकर। जो लोग किसी इदारे की बुनियादों में पड़ जाते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र अमेरिका से शुरू हुआ था, अल्लाह ने कराया, मैंने नहीं किया, अल्लाह ने कराया, पीछे से चलते चलाते मैं इसको बाज़ाब्ता शुरू करती हूँ अमेरिका से। ह्यूस्टन शहर 10 साल कह लीजिए कि हमारे नाम के साथ था और हम उसके साथ थे। और आज भी लोग मुझे तो यही कहते हैं कि जो भी बंदा हमें वहां पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है वो पीछे से आपसे ही सीखा हुआ है। ये लोग कहते हैं, अल्लाह करे क़यामत के दिन अच्छी गवाही हो, मैं किसी की कोई गवाही नहीं अभी दे सकती। लेकिन वहां जो काम था उसके बाद सेकंड स्टॉप हमारा जो था, या जिसको कहते हैं स्टॉप ओवर, वो ऑस्लो में था। ऑस्लो स्कूल यानी जो उसके मराहल थे, जिसको हम लिगत कहते हैं, वो इस वक्त आप बच्चों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ों ने मेरे हाले कई बार सुनी हुई है ये बातें। जिन लोगों ने उस स्कूल को बनाने में मदद की थी ना, और काले सैक में भर भर कर सोने के डब्बे लेकर आए थे ना, आज भी वो माशाल्लाह हमारे उसी स्कूल की क्रीम है, बिलीव में। आज भी वो साथी जिन्होंने 1.5 महीने में, 1.5 मंथ में, मैं गलत ना कहूं, या 6 या 5 मिलियन क्रोन जमा किया था, आज भी वो स्कूल में, क्योंकि उनको कदर है। उन्होंने अपने जेवर दिए हमें, उन्होंने मेहनत की, और उन्होंने एक एक चीज, कुछ 100-100 दफा तो एक एक मेज उठा के दूसरी जगह रखा। ये तो जगह जो अल्लाह ने हमें दी है, ये तो बड़ी ब्लेस्ड है, उनको कदर है आज भी। देर इज नो पेन, देर इज नो गेन। जिनको बाद में मिल जाता है, वो आए बैठे कुर्सियों मेजों पे, और जिन्होंने ये डेस्कों में बैठ के पढ़ा ना हमारे साथ, आज भी और वहां भी, आज भी वो खड़े हैं। तो जो नेमतों में आते हैं ना, वो नेमतों में पल जाते हैं। वो कहते हैं ना, मिन्नतें करके तेरी तुझे हमने बिगाड़ दिया। पौधे को ज्यादा पानी दे देना, वो फिर भी गल जाता है, खुश्क होने से तो सूखता ही है ना। तो कमजोर ईमान वाले वो रह जाते हैं। आपके बच्चे कमजोर ईमान वाले कब होते हैं, मैं आपको मिसाल देने लगी हूं। देखिए, वो बच्चा जो माँ को शादी के 10 साल बाद मिला, माँ क्या करती है उसको? उसका जिस्म कमजोर रहेगा, उसको छींक भी नहीं आएगी तो वो डॉक्टर पे ले जाएगी, उसको लपेटेगी, इसको ठंड ना लग जाए, इसको हवा ना लग जाए, इसको ये ना लग जाए, है ना। ये हमारे बाहर के मुल्कों के बच्चे अमूमन इसी तरह के पलते हैं ना। तो वो जरा पाकिस्तान बैक होम कभी जाए ना, तो ड्राइवर के कमरे में झांकिएगा, सर्दियों में उसका बच्चा जमीन पर, ठंडी जमीन पर बैठा है, उनको कोई जरासीम नहीं लगता, उनको मट्टी वाला पानी भी कुछ नहीं कहता। लेकिन हमारे बच्चे जो बहुत नेमत वाले, वो यहां से पाकिस्तान जाते हैं, बीमार क्यों हो जाते हैं? अक्सर बच्चों को डायरिया क्यों होता है? उनका ईमान नहीं, उनका जिस्म कमजोर रह जाता है। आजकल की बच्चियों के बारे में और आप पिछले दौर की औरतों को कंपेयर करें तो क्या तकाबुल आता है। कितने बच्चे थे आपकी नानी के? 6-6, 8-8 बच्चे थे। 8 बच्चों के बाद वो नानी यूं भाग भाग के काम करती थी कि किसी को खबर ना हो कि एक और बच्चा पेट में। डिलीवरी से पहले वो कहती थी, हम ऐसे भागते थे कि किसी मर्द को, किसी भाई, किसी देवर जेठ को खबर ना हो जाए कि बच्चा होने का वक्त करीब आ गया। और आज के लिए मैं तो नहीं कहती, लोग कहते हैं आज की बच्ची एक धुलाई की मार है, यानी एक बच्चा पैदा करके वो खुद बिस्तर पे आ जाती है, उसकी कमर में दर्द। कमजोर जिस्म, कमजोर ईमान, रिलेटेड कर लीजिए इसको। हम चाहते तो हमेशा ये है कि हमें कोई कुछ ना कहे, हमें कोई ना टोके, हमें कोई ना रोके, हमें कोई कुछ ना कहे, लेकिन याद रखिए ईमान कमजोर रह जाता है। ये जो सहाबा की इतनी शान है ना, वो इसलिए थी मजबूत, जिससे कहते मुखलिस सहाबा मुजाहिदीन भी थे, मुखलसीन भी थे, और कुछ लोग कमजोर ईमान वाले भी थे, लेकिन चलता है, इनको भी आने दिए हैं, ढीले डाले। आज के दौर में ये कौन लोग हैं? दिल बड़ा ही करता है कुछ करे, बस सेहत इजाजत नहीं देती। यकीन करें, इतना दिल करता है रोज आपके दरसों में आऊं, बस राइड नहीं है और बसों की आदत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, यानी ये वो लोग होते हैं कि जो अंदर से सच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, लेकिन मजबूत नहीं। जैसे आप देखिए ना, टेबल है, एक अच्छा टेबल भी होता है और एक बेचारा बेकार सा टेबल भी। एक $20 का भी टेबल मिल जाता होगा, लेकिन उस पर आप अपना लैपटॉप रखते हुए डरेंगे कि इसकी टांग अभी हिली और मेरा लैपटॉप नीचे गया। और एक स्टडी टेबल, अब ये टेबल पे रखा हुआ है ना, ये क्यों रखा हुआ है? कि मुझे यकीन है कि ये मजबूत है, तो इसकी जगह झूलता झालता मेज होगा तो मैं तो ये चीजें नहीं रखूंगी ना। लिखिए, अल्लाह की सुन्नत है, जितना आपका ईमान उतना अल्लाह आपसे काम लेगा। अल्लाह मुजाहिदीन से जितना काम लेता है, मुखलसीन से उतना नहीं लेता, और जितना मुखलसीन से लेता है उतना कमजोर ईमान वालों से नहीं लेता। और आगे अगर आखिरी रो पे ले चलूं तो वो हैं जी सूरत मुनाफिकून के हीरोज, जिनको अल्लाह ने वहां भी आई अल्लाजीना अमनु ही कहा। बात समझ गए? मुनाफिकीन ये हैं खोटे, ये दायरा नहीं बनना। क्यों? ये कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, ना इधर के ना उधर के। सूरत निसा की आयत याद है, छोटे पारे की आखिरी, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। दो गल्लों के बीच की बकरी, दो रेवड़ों के बीच में जो भटकने वाला कोई कह लीजिए भेड़िया। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़ात के लिए जीते हैं। लिखिए ज़रा इनकी भी खूबियाँ और फिर आइनों के ऊपर कपड़े डाल दीजिए चेहरा देखने से पहले। ये वो लोग हैं जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, चढ़ते सूरज के पुजारी। कामयाबियाँ इनका मुदा होती हैं। कामयाबी मिलेगी ये आपके साथ है, नाकामी मिलेगी ये भाग जाएंगे, यानी मौका मिलते ही भाग जाने वाले लोग। ये वो लोग हैं कि इनको इस हक का साथ देने से ज्यादा कामयाबी का साथ देने का शौक होता है। वो कहते हैं कि हालात अच्छे खूबसूरत दिन तो हम तुम्हारे साथ हैं, और जहां आप पे कोई फितना आ गया, कोई आजमाइश आ गई, आपके ऊपर कोई इल्जाम लग गया, कोई आफत आ गई, ये आपसे ऐसे जान छोड़ कहते हैं, हम तो नहीं उनको जानते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी नाम ना इनके साथ चला जाए लिस्टों में। नहीं नहीं हम तो इनके साथ नहीं हैं। ये हैं वो जो असल में इस्लाम की इमारत के किनारे पे खड़े लोग हैं, कहते खुद को मोमिन है। देखिए इनको रखना तो पड़ेगा क्योंकि जिसने कलमा पढ़ दिया वो कानूनी मुसलमान। इनके पैदाइश के खाने में डेट ऑफ बर्थ पे लफ्ज इस्लाम लिखा होता है, इनके पासपोर्ट पे रिलीजन के नाम पे इस्लाम लिखा होता है। ये जब शादी करते हैं तो उस वक्त इमाम साहब को कोई डाउट नहीं होता कि किसी नॉन मुस्लिम के साथ एक मुस्लिम की शादी हो रही है। हर जगह लीगल डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम मुसलमान होता है। ये अक्सर ईद की नमाज भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी ये जुमे की नमाज भी पढ़ते हैं, और अगर मैं नबी के दौर के मुनाफिकीन बमुकाबला आज के दौर के मुनाफिकीन की बात करूं तो अल्लाह के नबी के दौर का मुनाफिक क्या रईसुल मुनाफिक जुमे की नमाज में दरवाजे पे खड़ा होता था आपके आने से पहले। जिहाद में गया, तबूक तक गया और वापस भी आ गया, और चलिए ओहद में शौत तक तो गया ही था ना। ये है वो जो दूसरों की हिम्मतें तोड़ते हैं, ये है वो जो कहते हैं सोच लो देख लो, क्योंकि ये खुद नहीं कुछ कर रहे होते ना। ये भी जाते हैं जंगों में लेकिन ये फूट डालने जाते हैं। कुरान पढ़िए सूरत तौबा सारी खुली, अल्लाह कहता है क्या करना इनको ले जाकर, अद्दू अलैकुम, ये तुम्हारे अंदर घोड़े दौड़ाएंगे फितनों के। ये कहेंगे सोच हाय तुम्हें क्या हो गया, ओहो इतनी तुम कमजोर हो गई हो, और ये जिस्म क्यों फूल गया, चेहरे का तो रंग ही नहीं रहा, तुम तो अपना ख्याल ही नहीं करती, ये फूल गया जिस्म मोटा हो गया, तुम तो बैठी रही, हाय तुमने कभी फेशियल नहीं कराया। ये जाकर मशीनों में पार्लर्स में तीन तीन चार चार घंटे बैठते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, और जब इनको दीन के नाम पे कहते कहते नहीं मैं तो नहीं कर सकता। यानी ये लोग रहते साथ साथ हैं लेकिन बहरूपिए होते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। ये वो लोग हैं जो सबसे खतरे में। अब ये चूंकि मैंने आपको इस्लाम का सेल दिया ना, इसके बाहर आप खुद अपने नोट्स में एक डॉट्स डालिए, डॉटेड डॉटेड दौर, जो इस दायरे में नहीं आएगा, इसलिए डालने लगी हूँ कि अब आगे आपको बताने लगी हूँ एक चीज़। इधर मुझे नहीं था डालना, इसीलिए नहीं डाला क्योंकि उनकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम के सेल में, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए एक माइंड मैप में डॉट्स वाला दायरा डाल लीजिए मुनाफिकीन के दायरे के बाहर। वो हैं जी कुफार काफिरीन। ये क्यों डाला, जो बंदा जिस दायरे में है जरा सा उस दायरे से अगर बाहर निकला ना तो ये उसे अगले दायरे में आ जाएगा। अब अंदर से शुरू करते हैं सफर। आप दीन के रास्ते में जिद्दोजहद कर रहे हैं, कल का सबक याद कीजिए, मुजाहिदा हैं आप, तन मन धन रात दिन सुबह शाम फिक्र ही एक, घर में बच्चा बीमार है, घर में शौहर बीमार है, घर में माँ बाप बीमार हैं, लेकिन आपकी धुन दीन है। आप रोते बच्चों को गोद में लेकर दीन के काम कर रहे हैं, आपने कमिट किया, आपको कोई साइन करना है, कोई फॉर्म भेजना है, आपको कोई लिंक देना है, आप वो रोते बच्चे को गोद में थपथपा भी रहे हैं और काम कर रहे हैं, आप मुजाहिदा थी, ये आपका फर्स्ट कोर था। इफ़ यू विल स्टॉप स्ट्रगलिंग, अगर इफ़ यू विल गिव अप, नहीं 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 इन हालात में मेरे से नहीं होता जी हाथ, नहीं 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 मेरे बच्चे छोटे हैं, नहीं मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, नहीं इस वक्त मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है, मैंने उनका हाथ बटाना है, मुझे उनके साथ जॉब करनी है ताकि मैं घर का कर्जा उतारूं जो सूद का। इफ़ यू विल स्टॉप स्ट्रगलिंग, आप उस अगले दायरे में चले जाएंगे। आप अगर एक ग्रेविटी के कोर से निकलते हैं लेट्स सी, आपने नासा का नाम सुना होगा, स्पेस शटल जाती है आगे बाहर। जब स्पेस शटल वो चलेगी भी, आप कहते हैं सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है? उस स्पेस शटल को इस ग्रेविटी की हद से एक दफ़ा बाहर फेंकना। 80-90% स्पेस शटल्स जो अमेरिका की भी हैं या और भी मुल्कों की, वो जब वो उनको शुरू करते हैं ना, उसी वक्त गिर के तबाह हो जाती है, क्योंकि वो कशिश होती है। अखलद इलल अर्दी, सूरत तर्राफ में आता है अखलद इलल अर्दी। अल्लाह ने कुरान के आयतों का इल्म दिया था, लेकिन ये दुनिया की मोहब्बत में ऐसा चूर हुआ कि ये ज़मीन बोस हो गया, और फिर वो जो उसको वहाँ से मिलना था वो इधर से भी ना मिल सका। जब बंदा अपने दिल को इस दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चीज़ों की ग्रेविटी, इसकी अट्रैक्शन से निकाल लेता है ना, तो फिर जिहाद तो ज़िंदगी है, फिर तो मुस्कुराता है बंदा। ये साहबा मुस्कुराते क्यों थे जिहाद के लफ्ज़ पे? ये इतना उनको फैंटेसी वर्ड क्यों लगता था? अल्लाह मुझे पुकार रहा है, अच्छा मेरा नाम अल्लाह ने लिया, अच्छा मैं ये करूँ। अल्लाह के नबी उमैर बिन हमाम गज़वे उहद में खजूरें खा रहे थे, अल्लाह के नबी ने आयत पढ़ी वसारी इला मग़फिरतिन वाली सूरत आल इमरान में, कि दौड़ो भागो उस जन्नत की तरफ जिसकी कीमत कह ले आसमानों ज़मीन जितनी है। कहा अल्लाह के नबी मैं उस जन्नत में जाऊँगा? कहा हाँ तू जाएगा। ज़ुबान नबूवत से कुछ भी अल्लाह अदा करवा दे, कहाँ आप जाएंगे? कहा अच्छा, एक खजूर खाई, दूसरी खाई, कहने लगे वो जन्नत मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं खजूरें खा रहा हूँ। अब ये आज के दौर में आप और मैं नहीं आजमा सकते अपने ऊपर, ये ईमान और यकीन और मार्फत के दर्जे थे। खजूरें छोड़ी जाके मैदान जंग में लड़े, शहीद हो गए, बेजिगरी से लड़े, जिस्म की पोर पोर जो थी दुश्मनों ने मुसला कर दी। उनको जन्नत की खुशबू ओहद पहाड़ के पीछे से आती थी। अनस नजर साहबी थे, कहते मुझे ओहद पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आती है, उनको आती थी, हमें क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमारी जन्नत है हमारी दुनिया है, हमारी जन्नत हमारा घर है, हमारी जन्नत हमारी गाड़ी है, हमारी जन्नत हमारी जिकोजी है, और ABCD जो हमारी दुनियादारियाँ हैं वो हमारी जन्नत है। हम इस दुनिया को जन्नत बनाने के जिहाद में मुलव्वस हैं। लिखिए वी आर मुजाहिदीन, बट वी आर मुजाहिदीन फी सबील दुनिया, देवर मुजाहिदीन फी सबील अल्लाह, दोनों ही जिहाद है। देखिए कुछ दुनिया बनानी आसान है, जरा मर्दों से पूछिए कमरे दोरी हो गई कमा कमा के उनकी, कई लाख की तो एक गाड़ी है, कहाँ से आते हैं ये पैसे? दरख्तों पे डॉलर्स लगते हैं। जो दुनिया की जन्नत कमाते हैं, जो दुनिया की ज़रूरतें पूरी करते हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो जिनको आखिरत की लेनी है उनको नहीं करनी पड़ेगी? तो कीप स्ट्रगलिंग, कीप स्ट्रगलिंग, कीप स्ट्रगलिंग, जैसे हालात है ना जमे रहिए। तुम रूठे हम छूटे, आप एक दफ़ा ज़रा अपनी कुर्सी छोड़े तो सही, वो जैसे 10 जरासीम चिमटने को तैयार होते हैं ना उस बच्चे को, जिसको कह लीजिए कि वैक्सीन ना लगी हो या जिसको कोई इंजेक्शन ना लग जाए, इसी तरह आप हटिए तो सही, इतने जरासीम लगेंगे और आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक दफ़ा अगर आपने अपनी जगह छोड़ दी, अपना काम छोड़ दिया, वो दोबारा क्यू में जाइए। एयरपोर्ट्स पे ऐसा होता, आप क्यू में लगे होते हैं, कितना लंबा सामान चलते 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 घंटा लग गया, अब आपकी बारी आई। वो कहते हैं आपने वो वहाँ जाकर अपने वहाँ से अपना पेपर लिया था जो हमें चाहिए? नहीं, जाइए लेकर आइए। तो जब आप लेकर आते हैं तो वो आपको आगे आने देते हैं? वो कहते हैं ये ज़रा सामान हटाइए ना इधर से, चलो नेक्स्ट प्लीज़, तो आप फिर क्यू में लगते हैं, फिर आप 2 घंटे और चाहे खड़े हो, क्यू लगनी है, और वो भी क्यों में फिर वही लगेगा जिसका नसीब अच्छा है। मैंने आज तक किसी को एक दफ़ा अपनी जगह छोड़कर दोबारा उस जगह पे उस दिल से आते नहीं देखा, चाहे ख्वाहिश बड़ी करते हैं लोग, कहीं झिझक पड़ जाती है, कहीं रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं, 100 बातें, इनको तो छोड़ ही दीजिए।